सभी सुन रहे थे। ऐसा नहीं था कि ब्रह्मचारी का प्रवचन चालू हुआ तो गृहस्थ भगा दिए गए या गृहस्थ धर्म पर जब प्रवचन होने लगा तो ब्रह्मचारी भगा दिए गए। सब सुन रहे थे। ये सबके लिए है और प्रत्येक आश्रम के कुछ कॉमन नियम होते हैं, वे सभी आश्रमों के लिए होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई है ये है वेदों का अध्ययन और वीर की रक्षा। दो चीज मुख्य। ब्रह्म का अर्थ वेद होता है। वेद में ही जो रचा पचा रहे रात दिन इसको पढ़ने में याद करने में, तो इस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। और ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है, दूसरा रूप है, वो है शरीर में परम शक्तिशाली तत्व वीर की रक्षा करना, स्मूर्ध गति करना, नीचे न होकर के ऊपर उठे, स्मूर्ध गति जाते हैं। और ऐसे ब्रह्मचारी को जो कभी भी बीच स्खलन नहीं किया उसको ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहते हैं। तो जो भी हो, शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, पाठ, मनन और वीर्य रक्षा ये मुख्य है। तो उसमें भी सातवें स्कंद में भी एकादश स्कंद में भी यहाँ भगवान प्रवचन किए हैं। तो ब्रह्मचारी को स्त्री से बचने के लिए बहुत सुझाव दिया गया है ब्रह्मचर्य पालन के लिए, चाहे भगवान में मन को स्थिर रखने के लिए, शास्त्र के अध्ययन के लिए, चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, तो ब्रह्मचर्य की रक्षा बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री से संपर्क या चिंतन, यहाँ तक दर्शन श्रवण नहीं होना चाहिए, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। तो मैं श्री चैतन्य चैतन्य से एक प्रसंग कहना चाहता हूँ। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, आप सभी समझेंगे इस प्रसंग को, जो किसी भी व्यक्ति के भगवत भक्ति में सहायक है, भगवान चैतन्य महाप्रभु से संबंधित एक प्रसंग है। इस प्रसंग को सभी वैष्णव प्राय जानते हैं, मैं उसको लगातार कहना चाहते हैं। एक दिन भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिए प्रसाद के लिए, दोपहर के प्रसाद के लिए। तो भगवान आचार्य एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव है, बहुत मान्य। तो उन्होंने अपने घर पर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया प्रसाद खाने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु सहर्ष स्वीकार कर लिए, ठीक है मैं आऊंगा। तो गए खाने के लिए। तो खाया प्रसाद को बहुत अच्छा तरह से। भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए कुछ बेटर क्वालिटी का राइस पकाना चाहती थी। वो सामान्य मोटा राइस चलता था, उससे भिन्न सूक्ष्म राइस, छोटा छोटा राइस मछली चावल तो भेजे छोटा हरिदास को, जाकर के चावल मांग लाओ। किससे? सीखी माहिती की बहन से, जो बेचारी वृद्धा थी और परम तपस्विनी थी, वैष्णवी थी, जिसकी गणना चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय अंतरंग भक्तों में की जाती है। तो सीखी माहिती एक, राय रमानंद दो, और स्वरूप दामोदर जी तीन, और सीखी माहिती की जो बहन थी जिसका नाम था माधवी, वो आधा, साढ़े तीन। चैतन्य महाप्रभु के साढ़े तीन व्यक्ति बहुत प्रिय थे। अद्भुत अद्भुत वाक्य है चैतन्य चैतन्य में, चार न कहकर के साढ़े तीन कहा गया। कृष्णदास तुलसीदास गोस्वामी लिखते हैं, माहितिर भगनी से नाम माधवी देवी वृद्धा तपस्विनी और परमा वैष्णवी। वो वृद्धा थी, परम तपस्विनी थी और परम वैष्णवी थी, और सिखी माहिती एक राय रमानंद और स्वरूप दामोदर दो, साढ़े तीन। प्रभु लेखा करे जा रहे राधिकार गण, जगत तेरे मध्य पात्र साढ़े तीन जन। चैतन्य महाप्रभु इनको श्री राधा रानी का गण मानते थे, तीनों को, राय रमानंद, स्वरूप दामोदर, सिखी माहिती और उनकी बहन, साढ़े तीन को मानते थे। ये राधा जी के अपने व्यक्ति अंतरांग, इतनी उच्च कोटि की वैष्णवी थी। उसके पास से भगवान आचार्य, जो स्वयं ही परम वैष्णव थे, चावल मांगे। एक मान या मान का आपका कोई काठ की, काठ का बर्तन रहा होगा चावल नापने वाला, तो उसे एक मान मांगे। पता नहीं बंगाली मान का लोग डाली कहते हैं, कोई पात्र, तो कहे कि इतना चावल मांग लाओ। तो हरिदास गए, छोटे हरिदास, एक तो बड़े हरिदास है जो तीन लाख जप करते थे भगवान के परम प्रिय, अलावा एक छोटे हरिदास थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन सुनाया करते थे, पद कीर्तन, कीर्तनिया प्रसिद्ध थे। प्रतिदिन नियम पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के पास आया करते, कीर्तन किया करते। उनसे भगवान आचार्य ने कहा कि जा करके माधवी देवी से सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल मांग लो। उन्होंने नाम भी रखा कि ये चावल मांग लो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को खिलाना है, भगवान को खिलाना है। गए, मांग लाए, स्नेहे रांधिल प्रभु प्रिय जे व्यंजन, तैल प्रसाद आगा चाकी लंबू सलवान। तो महाप्रभु को जो भी सब्जी प्रिय थी उसको उन्होंने पकाया, जान गए थे क्या क्या खाते हैं, सब सब्जी बनाया और वो चावल स्पेशल बहुत सुंदर, बहुत स्नेह से बनाया। शब्द कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे, स्नेह रांधीला, स्नेह पूर्वक पकाया। मध्य में आसिया प्रभु भोजन में बसीला, शाल्य में देखी प्रभु आचार्य पृथ्वीला। मध्याह्न के समय चैतन्य महाप्रभु भोजन के लिए बैठे, बहुत स्नेह से पकाया गया था भोजन। तो परम उत्तम श्रेणी का चावल देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछे, प्रशंसा की, बहुत अच्छा चावल है, बहुत अच्छा चावल है, उत्तम अन्न एक तो तंडू कहाँ से पाईला। देखिए भगवान की भंगी अपने भक्तों को सिखाने के लिए सब कर रहे हैं। आचार्य ये चावल कहाँ से मिला आपको? आचार्य कहे माधवी पास मांगी अनिला, माधवी देवी के पास से मांग करके लाया गया है। चैतन्य दूसरा प्रश्न किए, कौन मांगने गया था? अभी भोजन चालू नहीं किए थे। ईश्वर की गति को जानना बड़ा कठिन, कौन लीला किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किससे कौन मांग कर रहे हैं, तो इससे उनको क्या मतलब था भोजन का मतलब, लेकिन वो कुछ लीला करना चाहते हैं, कौन मांग कर रहा है? प्रभु कहे कौन जाई मांगिया अनिला, कौन गया मांगा? छोट हरिदास नाम आचार्य कहिला। आचार्य ने कहा कि छोटे हरिदास गए थे, चुपचाप रह गए, चेतन कुछ नहीं बोले। अन्न प्रशंसिया प्रभु भोजन करिला, भोजन की चावल की प्रशंसा करके और चेतन खाए अच्छा से, निज गृह आशी गोविंदेरे आज्ञा दिला, और अपने गंभीर निवास में आकर के काशी मिश्र के भवन में वो रहते थे। चेतन महाप्रभु जो पूरी में गए हैं सब देखे हैं कहाँ भवन जाते थे, तो आकर के अपने सेवक गोविंद को आज्ञा दिए। गोविंद भगवान के श्री अंग की सेवा करते थे, वही खिलाते थे पिलाते थे मसाज करते थे, तो उनको कहे आज है ते ए मोर आज्ञा पालिबा, छोट हरिदास यहाँ आसी के न दीबा। सुनो मैं तुमको स्पेशल आज्ञा दे रहा हूँ, छोटा हरिदास यहाँ नहीं आना चाहिए। गोविंद ये साहस नहीं किए कि क्यों, पूछने का ही साहस नहीं किए, बड़े क्रोधित मुद्रा में चैतन्य महाप्रभु थे। केवल बनावटी क्रोध था, भीतर से तो प्रेम था, तो छोटे हरिदास को यहाँ मत आने देना, घुसने मत देना है। तो ठीक है, द्वार माना हरलो हरिदास दुखी हरलो मने, किला गया द्वार माना के नहीं जान। तो जब छोटे हरिदास आए चेतन महाप्रभु के पास कीर्तन गाने के लिए निकट, तो गोविंद ने कह दिया कि नहीं आपको मना है, भगवान ने मना किया आप यहाँ नहीं आ सकते। यह बात सर्वत्र फैल गई कि छोटे हरिदास को मना कर दिए गए, चेतन महाप्रभु तक नहीं जा सकते, उन्होंने आज्ञा दिए। तो कोई कुछ जानता नहीं था क्या बात है भाई, क्यों मना कर दिया गया, क्या अपराध क्या थी, और वास्तव में कोई अपराध है? अब जरा विचार कीजिए, एक परम वैष्णवी परम तपस्वी वृद्धा वैष्णवी से चावल मांग करके लाया गया है, वही भगवान को खिलाने के लिए, और कोई मांगा तो पूर्ण किया है ना, भगवान की सेवा के लिए गया मांग करके लाया तो और कोई अपराध तो है नहीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि किस कारण से मना कर दिया गया, केह नहीं जाने, कोई नहीं जाना। तीन दिन हल हरदास करे उपवास, स्वरूपाधिक आशी पिछला महाप्रभु पास। तीन दिन बीत गया, जब द्वार मना कर दिया गया तो छोटे हरिदास भोजन छोड़ दिए। सिर्फ भगवान जिसको डायरेक्ट कहते नहीं इसको नहीं आना, तो तीन दिन तो खाए नहीं उपवास किए। तब स्वरूप दामोदर जी राय रामानंद और सब कई वैष्णव मिल करके चैतन्य महाप्रभु के पास आए, और आकर के कहे कौन अपराध प्रभु कैला हरिदास, किला दिया द्वार माना करे उपवास। प्रभु हम एक बात पूछना चाहते हैं, हरिदास ने क्या अपराध किया, किस कारण से आपने उसको यहाँ आने से मना किया? वो तो उपवास कर रहा है, मर जाएगा खाए बिना, आप कृपा कीजिए आने दीजिए उसको, क्या अपराध किया? प्रभु कहे वैरागी है करे प्रकृति संभाषण, वैरागी होकर के वह स्त्री से बात करता है, चावल मांगने में जो भी दो चार वाक्य बोले चावल भगवान आचार्य के यहाँ प्रसाद बनाना है, तो ये प्रकृति संभाषण हो गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु वैराग्य धर्म की इतनी उत्कृष्ट शिक्षा देते थे कि स्वयं कभी स्त्री शब्द का उच्चारण नहीं किया, स्त्री को प्रकृति कहते थे। अब संपूर्ण चैतन्य चैतन्य ने उनकी लीलाओं में देखी है तो चैतन्य महाप्रभु बहुत रेयर स्थान है जहाँ पर स्त्री शब्द का प्रयोग किया स्त्री के लिए। ये कहते हैं कि स्त्री संगी एक असाधन कृष्ण भक्त आर, स्त्री में अटैच रहने वाला एक नंबर का वो असाधु है, लेकिन संख्या में एक एक वो असाधु है और दूसरा असाधु है कृष्ण भक्त। कृष्ण अभक्त, कृष्ण का कोई भक्त नहीं है वो, भले देखने में लगे कि सन्यासी है, त्यागी है, महापुरुष है, लेकिन अगर स्त्री में अटैच है तो वो असाधु है। कृष्ण भक्त, कृष्ण का अभक्त, मन नहीं भक्त। तो ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु ने स्त्री शब्द बताया है, स्पष्ट नहीं बोला है, बाकी शब्द प्रकृति प्रकृति प्रकृति। क्या अपराध किया है छोटे हरिदास ने, तो भगवान कहते हैं वैरागी हैया करे प्रकृति संभाषण, पूछो क्या है, वो वैरागी है ना, ब्रह्मचारी है और वैराग्य लिया है, वैरागी हो करके भी स्त्री से बात करता है, स्त्री संभाषण प्रकृति संभाषण, इसलिए मैंने मना किया है उसको। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी तेना वैरागी होकर के स्त्री से बात करता है, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। यहाँ आएगा जाएगा तो चेहरा देखना पड़ेगा ना, उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, तो ठीक है ना, पारो बदन उसका बदन देखना नहीं चाहता। गृहस्थ स्त्री के साथ रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है परिवार में, तो उसका तो चलेगा स्त्री से बात कर, लेकिन वैरागी होकर के विरक्त होकर के अब बात करता है तो मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती। और कुछ बड़बड़ा रहे थे क्रोध विचेतन महाप्रभु, दुर्गा इंद्रिय कर विषय ग्रहण धारवी प्रकृति हरे मुने रपी मन, विषय इतने प्रबल है कि यदि इंद्रियों का संग उनके साथ हो, रूप रस गंध स्पर्श और कौन है रूप शब्द, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, शब्द श्रवण इंद्रिय का विषय है, रूप आँख का और त्वक का विषय है स्पर्श, रसना का विषय है रस और नासिका का विषय है गंध, यदि ये विषय मिलते हैं इंद्रियों को, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यदि विषयों का संयोग होता है इंद्रियों से, तो ऐसा होने पर धारवी प्रकृति हरे मुने रपी मन, काठ की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई स्त्री भी मुनि का भी मन खींच लेती। भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों एक्सट्रीम है, एक तरफ एक स्त्री है वो भी जीवित स्त्री नहीं है, दुकान पर देखते हैं गारमेंट बेचने के लिए लोग काठ की स्त्री या प्लास्टिक की स्त्री सजा देते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दारवी प्रकृति दारू की बनी काष्ठ की बनी हुई स्त्री भी मुनि का भी मन हर सकती है, निर्जीव काठ जो पेंट कर दिया गया, श्रृंगार कर दिया गया, साड़ी आदि पहना दिया गया, तो वो दारवी प्रकृति मुनियों का भी मन हर सकती है। तो ये क्यों बात किया, बैरागी होकर के स्त्री से क्यों बात किया, इसीलिए मैं उसको चेहरा नहीं देखा। बहुत महत्वपूर्ण बात, दुर्गा इंद्रिय कर विषय ग्रहण दारवी प्रकृति हरे मुने रपिमान। यूनिक अर्थ है जो मननशील है, विचारवान है, जो जानते हैं कि ये विषय बड़े प्रबल हैं, इंद्रियों से इनका संजोग घातक होता है, इसको जो जानते हैं इसलिए नहीं संजोग रखते हैं। तो फिर भी कदाचित वे देख लें किसी काठ की भी स्त्री को, प्लास्टिक की भी स्त्री को, तो उनका मन शुद्ध हो जाता है, चंचल हो जाता है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक कोट किया, मात्र स्वस्रा गृहित्रा वा ना विविक्ता समो भवेत बलवान इंद्रिय अग्रामो विद्वांसम अपि कर सती। अपनी जननी के साथ भी, अपने बहन के साथ भी, यहाँ तक अपने पुत्री के साथ भी व्यक्ति को चाहिए कि वो एक आसन पर न बैठे। यह उद्गार एक गृहस्थ का है, महाराज जजाति का, जो 1000 वर्ष तक विषय भोग किए, पर विषयों की सत्यता का उन्हें ज्ञान हुआ, इसमें कोई कम नहीं है। तो अपनी पत्नी से यह श्लोक बोल रहे हैं कि अपनी माँ के साथ भी एकांत रूम में एक आसन पर नहीं होना चाहिए, अपने बहन के साथ भी और पुत्री के साथ भी, और पिता बाकी क्या है, इनके साथ भी, जिनके साथ मनुष्य का मन प्राय चंचल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एकांत हो और संकीर्ण आसन हो, तो बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का ये जो समूह है बहुत बलवान है, विद्वांसम अपि कर सके। जो व्यक्ति जानता है अपने संबंध को कि ये मेरी माँ है, बहन है, पुत्री है, पर ऐसे विद्वान को भी ये इंद्रियां खींच लेती हैं, क्योंकि इंद्रियां गण, इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का समूह है। आंख खींच लेगी रूप देखने के लिए, कान शब्द सुनने के लिए, त्वक स्पर्श करने के लिए, और रसना खाने के लिए, चाटने के लिए खींच लेगी, और नसिया गंध के लिए। एक इंद्रिय नहीं, इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय समूह विद्वान से अति कर सकती, विद्वान को भी खींच लेती। तो चैतन्य आपको इस तरह से कह रहे हैं कि शुद्ध जीव सब मरकट वैराग करिया इंद्रिय बोले चराया बोले प्रकृति संभाषी। ये शुद्ध जीव मरकट बैराग दिखाते हैं, बंदर का बैराग थोड़े देर के लिए, और इंद्रिय चराया बोले प्रकृति संघर्षण है, और इंद्रियों को उनके विषयों में छोड़ देते हैं और फ्री स्त्री से बात करते रहते हैं। ये आचरण करते हैं। जब शास्त्र सावधान कर रहा है कि भाई नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो क्यों जाकर के मांगा, क्यों इस स्त्री से बात किया, क्या हो गया, इतनी वृद्धा तपस्विनी परम वैष्णवी से चाल मांगा गया, कुछ आशय है भगवान का। इस तरह से अपने प्रिय भक्त को दंड दे करके अन्य भक्तों को सावधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे हरिदास गए और परम वैष्णवी माधवी देवी से चावल मांग लिए तो उनका मन चंचल था या उनका कुछ हो गया, नहीं कुछ नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम प्रेमी ही थे, परम विरक्त थे, भगवान की सेवा के लिए चावल मांगे थे। पर भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध जीव होकर के मरकट बैराग दिखाते, दिखाइए मरकट बैराग्य। मरकट शब्द का अर्थ है चंचल अथवा बानर, बानर का वैराग्य आप लोगों ने शायद नहीं देखा, हमने देखा है। बानर और बानरी बहुत जल्दी जल्दी रुसते हैं आपस में, हमने देखा है। तो जब एक मान जाता है बानर कभी कभी रुसता है, कभी बानरी रुसती है, तो ऐसे मुंह कर लेते हैं। एकदम उदास खिन्न सुनता हम स्वर में नहीं रहेंगे। और वो तब सहलाती है, वो ढील हेरती है, जू हेरती है पानी का, ऐसे ऐसे करती है, ऐसे खुश। तो कुछ देर के बाद वो रुसती है। इनका ज्यादा से ज्यादा वैराग्य का टाइम 10 मिनट नहीं हो सकता, 10 मिनट एक्सीड नहीं करे। और तुरंत ईमान करके इसके बाद अंग संचार, ये बैराग्य मरकट बैराग्य। क्षुद्र जीव सब मरकट बैराग करिया, इंद्रिय चराइया बोले प्रकृति संभाषी है। इस तरह से बैराग करके क्षुद्र जीव तुरंत कृष्ण संभाषण करने लगते है। इस समय तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, स्त्री से डायरेक्ट बात तो सबके सामने न करके मोबाइल फोन से खूब चलता है। चले गृहस्थों का कोई बात नहीं, लेकिन बैरागियों का नहीं चलना चाहिए। व्यभिचारियों को इसमें नहीं पालना चाहिए, कोई भूल करके। ये चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही है। इतक वही महाप्रभु अभ्यंतर गेला, गोसाई आवेश देखी सब मौन हैला। इतना कह करके चैतन्य महाप्रभु चले गए। पहले तो आए थे कि क्या कहना है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये लोग कहे पूछे कि हरिदास का क्या अपराध हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु इतना भाषण करते कि बैरागी होकर के स्त्री से बात करता है, तो सब कह करके और चले गए अपने घर। उनका मूड बहुत दूसरा था, तो इसके बाद स्वरूप दामोदर जी अभी कुछ साहस नहीं कर सके कहने का। हर दिन सब मिली प्रभु चरण है, हरिदास लागी किछु कैला निवेदन है। एक और दिन सब मिल करके एक बार फिर चैतन्य महाप्रभु के पास आए, क्योंकि छोटे हरिदास उपवास कर रहे थे। उनकी दशा देख करके सब चैतन्य महाप्रभु के पास एक बार फिर आए और हरिदास के लिए भगवान के चरणों में निवेदन किए। अल्प अपराध प्रभु कर प्रसाद, तेरे शिक्षा है न करीबे अपराध। प्रभु ने छोटा सा अपराध किया, क्या अपराध किए, तो अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की खुशामदी के लिए करे अल्प अपराध। अगर आप अपराध मानते थे तो बहुत छोटा अपराध। इनके कहने का आशय था कि अपराध नहीं किया है, लेकिन अब ऐसा कहते तो शायद चैतन्य महाप्रभु और बिगड़ जाते, क्लोज कर दे। इसलिए लोग अल्प अपराध कर, अल्प अपराध प्रभु कर प्रसाद, छोटा अपराध किया है और इस पर कृपा कीजिए, इसको आने दीजिए, हम बहुत शिक्षा मिल गई, दंड हो गया, अब ये अपराध नहीं करेगा। चैतन्य महाप्रभु पहले तो कुछ कहे थे पहली बार, लेकिन अब इस बार कहते हैं, प्रभु कहे मोर बस न है मोर मन, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मुझसे बात मत करो तुम लोग। सब तो साहस नहीं कर सके दूसरे बार कुछ कहने का। प्रभु कहे मोर मन मोर बस न है मोर मन, प्रकृति संघासी बैरागी ना करे दर्शन। मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरा मन उस बैरागी का मुख नहीं देखना चाहता है जो प्रकृति से संभाषण करता है। बैरागी प्रकृति संभाषी बैरागी ना करे दर्शन, स्त्री से बात करने वाले बैरागी का दर्शन करना मैं चाहता है। और अब मुझे कुछ कहो मत तुम लोग, क्योंकि मेरा मन मेरे बस में नहीं है। चले फिर भी एक बार और कहा जाएगा चेतन महाप्रभु से, निज कार्य जहाँ सबे छाड़ा वृथा कथा, पुनः यदि कह आना ना देखिबे यथा। जाओ जाओ अपना काम करो, जो तुम लोग अपना भजन है वो सब करो, और अगर इसके लिए आए तुम लोग फिर कुछ कहे तो फिर मुझको यहाँ नहीं देखोगे, मैं अलग नाथ साइकिल चला जाऊंगा, यहाँ नहीं देखोगे। फिर मुझसे कहने का साधन यदि बात तुम नहीं माने और कहे कि आगे आना मत, अगर फिर इस बात को कहे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये तो सुन सबे निज कार्य हस्त करण दिया, निज निज कार्य सबे गलत कान पर हाथ रखे फिर कहे। ये बात सुनना नहीं चाहते थे, वो चले गए। इसका मतलब ये वो काम फटा के लिए कुछ कहने के लिए, नहीं तो कहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे यहाँ से। महाप्रभु मध्याने करके चली चली गेला, बुझन न जाए प्रभु, यही महाप्रभु लीला। और चैतन्य महाप्रभु मध्यान करने के लिए चले गए मध्यकालीन संध्या, और इसके बाद सब अपने अपने कार्य में गए। किसी का साहस नहीं होता था कि दोबारा चले। आठ दिन सबे परमानंद पूरी स्थान है प्रभु के प्रसन्न कर खेला निवेदन है। एक दूसरे दिन सब लोग परमानंद पुरी के पास गए। परमानंद पुरी को चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते थे, पूज्य मानते थे। तो ये सब स्वरूप दामोदर आदि जा करके उनसे निवेदन किए कि आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए, प्रभु के प्रसन्न कर कैला निवेदन है, आप जाइए और प्रभु को प्रसन्न कीजिए। तो वे सोचे कि हमारा आदर करता है चैतन्य तो बात मान लेगा, वे गए। तबे पुरी गोसाई एका प्रभु स्थान आईला, नमस्कार प्रभु तारे संध्या में बसाईला। परमानंद पुरी गए तो वहाँ तो एकांत में गए, एक एकला और दूसरे में अकेले। तो चैतन्य महाप्रभु उठ करके उनको बैठाए और बैठते बैठते पूछ दिए, पूछिला की आज्ञा केने हेला आगमन, आपकी क्या आज्ञा है, आप किस लिए आए, आपका कोई प्रयोजन है आने का। हरिदास प्रसाद लगी कैलानी जो परमानंद पूरी कर हरिदास भोजन नहीं कर रहा है, बेचारा मर जाएगा, आप प्रसन्न होइए इतना ही कहे। एतो बोली तारे स्नान भोजन कराए, सुनिया कहे न प्रभु सुन गोसाई, सब वसु लैया तुम यही रहा यही खाए। चेतन अपने कहते सुनिए गोस्वामी जी परमानंद पुरी, सभी वैष्णवों को लेकर के आप यहाँ रहिए और मैं चलता हूँ। गोविंद उठाओ सामान क्या, वहाँ कोई पैकिंग कर रहा था, कोई चिथड़ा फिथड़ा एक पड़ा होगा, बहिर्वास ये कॉपी, चलो चलो हम आलापना चलते जी। भाई तो पहले से भी कड़ा कदम हो गए। सुनिए कहे न प्रभु सुन हर गोसाई, सब वैष्णव भैया तुम ही रह यही ठाई, मोरे आज्ञा है मुई जब अलालनाथ, अकेले रहिबो तहां गोविंद मात्र साथ, मैं अब अकेले रहूंगा कोई मेरे पास नहीं आएगा, ये गोविंद मेरे साथ रहेगा बस, और मैं चलता। ये तो बोली प्रभु यदि गोविंद बुलाई ला, इतना कह करके गोविंद बुलाया तो बाहरी कुछ बाहरी घर, चलो 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 अलारनाथ चलो। किसी तरह से पूरी हाथ पकड़ ली, बज नहीं नहीं अब हम कभी नहीं कहा, आप बस सेवा करिए। तो बोले प्रभु यदि गोविंद बुलाई ला, पूरी नमस्कार करी उठिया चली ला, आस्ते व्यस्त पूरी गोसाई प्रभु प्रभु आगे गेला, अनु है करी प्रभु रे घरे बसाईला। तू दौड़ कर चले गए आगे, भगवान को मनाने लगे नहीं 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 आप रहिए रहिए, किसी तरह से फिर अपने घर में आए चैतन्य महाप्रभु। तो परमानंद पुरी क्या कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु घर में आ गए तब कहते हैं तुम्हारा जो इच्छा करो स्वतंत्र ईश्वर, आप स्वतंत्र ईश्वर है, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, केवल की बलि के पारे तुम्हारा ऊपर। अब आपके ऊपर क्या कोई कहेगा, क्या कुछ कहेगा नहीं, आप रही, अब आपसे कोई कुछ नहीं कहे, आप स्वतंत्र ईश्वर है, भगवान है। लोक हित लगी तुम्हारा सब व्यवहार, मैं ही समझ रहा हूँ कि जगत में अन्य मनुष्यों का हित करने के लिए ही आपका सब व्यवहार होता है, कोई न कोई रहस्य जरूर है, अपराध तो नहीं है उसका, लेकिन लोक हित लगी तुम्हारा सब व्यवहार, हमी सब न जानी गंभीर हृदय तुम्हार, एक बलिपुरी गोसाई गेला निज स्थानी हरिदास स्थानी गेला सब करके परमानंदपुरी अपने स्थान पर गए। जब उन्होंने कहा कि चैतन्य आप लोग ऐसे कह रहे हैं भाग जाएंगे, भाग के जाएंगे चावल दिए थे तो किसी तरह से मैंने मनाया रखा, अब उनके पास कोई मत जाया किसी, तो सभी वैष्णव मिल करके हरिदास ठाकुर हरिदास छोटे हरिदास के पास गए। तो स्वरूप दामोदर जी कहे उनसे, स्वरूप गोसाई कहे सुनो हरिदास, सब सब सर्व तुम्हार हित वांछी करो विश्वास, छोटे हरिदास तुम विश्वास करो, हम सब तुम्हारा हित चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास तुम ध्यान करो, वही रहो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान हट कर पड़े हुए हैं, तुम अपना हट छोड़ दो, वो तो छोड़ेंगे नहीं, उनको हम लोगों ने देखा है जब हट कर पड़ते हैं तो बहुत कठिन होता है, तुम हट छोड़ दो, खाओ फिर छोड़ो, बाद में प्रभु खुश होंगे ना, दया में हम दया करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन अभी खाओ फिर स्नान करो, तुम भी आग्रह करने से समझाने से छोटे हरिदास स्नान किए भोजन किए, लेकिन साल भर इस तरह से रहे जगन्नाथ पुरी, और मना हो गया था जाना चैतन्य महाप्रभु, इसके बाद एक दिन उठे साल भर के बाद, किसी से कुछ कहे नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, आ करके त्रिवेणी में प्रयागराज में संगम पर जल में डूब गए, और गंधर्व शरीर से वे चैतन्य महाप्रभु को गीत सुनाया करते थे पूरी, कई लोग सुनते थे गीत, कई लोग सुनते थे, कुछ लोगों ने कहा कि आत्महत्या किया है इसलिए गंध राक्षस हो गया है, भूत हो गया, लेकिन उनको समझाया गया सब लोगों को, स्वरूप दामोदर दिखाए गए, एक तो क्षेत्र में मरण हुआ है गंगा जी ने प्रयागराज में, और भगवान का इतना प्रिय पार्षद कीर्तनिया सेवा किया है कि ऐसे कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती, दुर्गति नहीं हो। उन्होंने रहस्य बताया कि गंधर्व शरीर से चैतन्य महाप्रभु गीत सुनाया करता है, तो कई लोग सुने, तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने एक दंड दिया अपने प्रिय पार्षद को, इसके पीछे उनका ये उद्देश्य था कि जब इस घटना को सुना सब लोगों ने, हरिदास को बिल्कुल मना हो गया, तो अन्य जो वैष्णव थे वे सपने में भी स्त्री संभाषण छोड़ दी, और सपना भी किसी दिन नहीं देखे कि मैं किसी स्त्री से बात कर रहा, सपना भूल से हो जाती है ना, सपने में अपना बस नहीं रहता है, कहाँ सावधानी रहती है सपना में, कोई भी दृश्य आ जाता, लेकिन वे इतना सावधान थे कि सपना भी किसी दिन नहीं आया कि हम स्त्री से बात कर रहे हैं, इतना चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। तो ये है ब्रह्मचारियों का सबसे मुख्य निषेध परक कर्तव्य, विधि परक कर्तव्य तो है भगवान का जप करना और विशेष करके शास्त्रों का अध्ययन करना, लेकिन इसका भी बहुत महत्व है। मैं इस प्रकार के आज्ञा पाया था कि ब्रह्मचारियों के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमको क्या बोलना है, कृष्णदास कविराज को सर जो बोल रहे हैं मैंने सुना दी, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है ये कोई हमारी गड़ी हुई बात नहीं है, शास्त्र है, चैतन्य चैतन्य ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड रहना ही चाहिए। उसके अनुसार कौन किस देश में काल में परिस्थिति में कैसे अपने को एडजस्ट करेगा वो तो देश काल स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन स्टैंडर्ड ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि वैरागी को स्त्री संभाषण नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद।